पृष्ठ संख्या 267, 25। अब हम साहित्य के समकालीन परिदृश्य पर आ पहुंचते हैं, जिसे सामान्यतः युवा लेखन के नाम से पुकारा गया है। यह नामकरण कुछ ऐसा सुविधाजनक है कि इसके अंतर्गत विविध पृष्ठ संख्या 268 प्रकार की रचनात्मक बेचैनी और रचना प्रक्रिया, जिनमें कई की दिशाएं परस्पर विरोधी भी हैं, को शामिल कर लिया जाता है। पर उनके विवेचन से पूर्व यह उचित और उपयोगी होगा कि आधुनिक युगीन रचनात्मक क्षमता में अब तक की कुछ प्रमुख उपपत्तियों और निष्पत्तियों को एक साथ देख लिया जाए। आधुनिक भावबोध के समग्र साहित्य की एक प्रमुख विशेषता उसका स्वचेतन होना है। परिवर्तन और विकास के बीच प्रधान अंतर चेतनता का है। परिवर्तन सहज है, विकास प्रयत्न साध्य है, और आधुनिकता विकास का स्वचेतन प्रयत्न है। मार्क्सवादियों ने इसी को कहा है कि इतिहास के चक्र को तेजी से चलाना। द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत में से निकलता है कि विकास को तो संघर्ष की प्रक्रिया से अपने आप होता चलता है, पर उस प्रक्रिया को द्रुततर करना यह आधुनिकता का लक्षण है। पश्चिम में आधुनिकता का उपकरण यांत्रिकी है, साम्यवादी देशों में इतिहास। रचना में भाषिक विधान की आधुनिक चिंता अधिकतर इस स्वचेतनता का परिणाम है। जब रचनाकार और आलोचक दोनों इस रचना प्रक्रिया के प्रति अधिक सजग हुए हैं, युवा लेखन में नई कविता या नव लेखन की स्वचेतनता के प्रति विरोधी प्रतिक्रिया हुई है, जिसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। भाषिक प्रक्रिया में नए कवियों द्वारा कई प्रयोग हुए। सूक्ष्म अनुभव की पकड़ के लिए मित कथन हमेशा सहायक रहा है। प्रसाद और निराला के श्रेष्ठ गीतों और अज्ञेय के अधिकतर कृतित्व में मित कथन या हल्की व्यंजना का प्रयोग देखा जा सकता है, जहाँ शब्द का समूचा अर्थ न ग्रहण कर उसकी कोई हल्की छाया उभरती है। मित कथन से आगे अधिकतर आधुनिक चित्रकला के साक्ष्य पर अमूर्तन और विरूपण की प्रक्रियाएं नए साहित्य में शुरू हुईं। भाषा के ऐसे प्रयोग कम रचनाकारों ने किए हैं। उदाहरण के लिए रघुवीर सहाय, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन अग्रवाल के नाम लिए जा सकते हैं। भाषा के इस रूपांतरण ने नई कविता और नव लेखन की संवेदना को क्रमशः रूपांतरित किया है। रघुवीर सहाय और विपिन में आक्रोश तथा तीखेपन की जगह अपेक्षा ठंडे और निरावेग स्वर ने ले ली, जहां अनुभव पर आक्रमण की मुद्रा उतनी नहीं जितनी उसे समझने की है। युवा लेखन में इस प्रवृत्ति की भी प्रतिक्रिया हुई है। अब युवा विकल्प के अपने रूप को देखें। समकालीन साहित्य में नई कविता के बाद कई प्रकार के रचना आंदोलन उभर कर आए दिखाई देते हैं। भूखी विद्रोही पीढ़ी, अन्यथावाद, अनर्थक अभिव्यक्ति के विभिन्न प्रकार तथा अकहानी और अकविता, इन सभी आंदोलनों के बीच हमारे युग की युवा पीढ़ी का विक्षोभ, आक्रोश और विद्रोह भाव मूल प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। पर ऐसा लगता है कि यह विक्षोभ, आक्रोश और विद्रोह का भाव तथा उसकी दिशा ठीक ठीक परिभाषित नहीं की जा सकी है, समीक्षा के क्षेत्र में नहीं स्वयं रचना के क्षेत्र में ही। स्वतंत्रता के पूर्व आक्रोश एकमात्र विदेशी सत्ता के प्रति सहज रूप में था। स्वतंत्रता के बाद आक्रोश की दिशा क्या हो, यह समझना उतना सीधा सरल नहीं रह गया। विक्षोभ और विद्रोह एक अवधि के बाद रचनात्मक स्तर पर अपने लिए एक सीमा बना लेते हैं, क्योंकि तब लेखक की दृष्टि विद्रोह के आलंबन से पूरी तरह बंध जाती है और स्वतंत्र ढंग से सोच पाना बाधित होता है। इसलिए विद्रोह का आरंभिक स्थिति में महत्व निर्विवाद होते हुए भी मूल बात व्यक्तित्व को साधारण भाव से परिचालित करना और होने देना है। इस स्वाधीन चिंतन और स्वतंत्र विकास में परंपरा और विद्रोह दोनों के पूर्वाग्रह आड़े आ सकते हैं। विद्रोह को परिभाषित करते रहने की प्रक्रिया इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पृष्ठ संख्या 269, तभी लेखक सोच पाता है कि उसे स्वयं क्या कहना है। नई कविता के अन्यतम कवि रघुवीर सहाय ने विद्रोह के इस ठंडे ढंग को और उसकी शक्ति को बखूबी पहचाना था, जब उन्होंने कहा, यानी कि आप ही देखें कि जो कवि नहीं है अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और ढहाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है, क्यों मुझे दूसरों को तोड़ने की फुर्सत है। पर युवा लेखन में अपरिभाषित विद्रोह और आक्रोश का स्वर प्रबल हो जाता है। युवा लेखन की एक मुख्य धारा अकविता का कोई अर्थ नहीं, सिवा इसके कि वह कविता होने का परंपरागत ढंग से बिल्कुल अलग एक नया प्रकार है। यह नया ढंग स्पष्टता प्रचलित कवितापन को छोड़कर कविता के कुछ नए शक्तिशाली उपकरणों की तलाश है। इस माने में अकविता नामकरण की संगति समझी जा सकती है, पर मूल प्रश्न है कि यह तलाश कहाँ तक सार्थक और संगत है। प्रारंभ शीर्षक 14 कवियों का संकलन 1963 में प्रकाशित हुआ। जगदीश चतुर्वेदी द्वारा भूमिका में कहा गया, इस अभिनव काव्य के संकलन में कदाचित प्रथम बार हिंदी की शुद्ध पीढ़ी के कवि एक स्थान पर संग्रहित हैं। इनमें से कुछ अकवि अकविता आंदोलन से जुड़ते हैं और अकविता शीर्षक से एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। इस पत्रिका के अंकों और कुछ स्वतंत्र अकविता संकलनों को देखकर लगता है कि इन कविता या कि अकविता लेखकों की मुख्य दृष्टि यौन जीवन के प्रचलित और स्वीकृत रूपों पर है और यह कि वे इन रूपों से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। उनकी तीव्र और क्रुद्ध दृष्टि की इस प्रसंग में दो बड़ी सीमाएं हैं। एक का तो उल्लेख पहले किया जा चुका है, यानी अकविता के संसार में उसके विद्रोह का आलंबन सेक्स या यौन जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो गया है। यौन जीवन से आक्रांत अकविता के इस रूप को देखकर पुराण कथाओं में वर्णित गौतम द्वारा अभिशप्त इंद्र का रूप स्मरण हो आता है। स्पष्ट ही मानव और यथार्थ का यह सर्वथा अति रंजित या कि विकृत रूप है। दूसरी कठिनाइयों को समझने के लिए कला माध्यमों की प्रकृति के सूक्ष्म अंतर की ओर ध्यान देना होगा। यौन जीवन के अनुभव अपने विविध आकारों और गतिशीलता में सीधी तथा प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दृश्य कलाओं में अधिक संगति और सफलता के साथ पाते हैं। खजुराहो का स्थापत्य, ग्रीक मूर्तियां और फ्रेंच चित्रकला के निर्वचनाएं इसका प्रमाण है, जहाँ मानव शरीर को उत्सव और कभी कभी विभीषिका के रूप में भी अंकित किया गया है। पर यौन जीवन के संदर्भ में सीधा शब्द प्रयोग अश्लीलता को जन्म देता है, क्योंकि वह अनुभव को सतह पर उघाड़ता है, संप्रेषित नहीं करता। अकविता के लेखक सिद्धांत रूप में और व्यवहार में इस सीधी अभिव्यक्ति को ही महत्व देते हैं। आधुनिक साहित्यिक परिदृश्य पर सीधी अभिव्यक्ति को कला मूल्य मानने वाले कई प्रकार के रचनाकार हैं। नई कहानी का इस प्रसंग में उल्लेख पहले हो चुका है। आगे आते हैं अकविता के कवि जिनका मानना है कि 7वें दशक की कविता को नई सभ्यता विरासत में मिली है, इसलिए उसके प्रति विमोह की स्थिति अकविता में नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति सीधी तथा प्रभावपूर्ण है। अकविता 5, इस माने में अकविता नई कहानी के निकट है, नई कविता के नहीं। नई कविता और नई कहानी में नई पद ऊपर से एक सा पृष्ठ संख्या 270 दिखने पर भी दोनों की विरोधी रचना प्रवृत्तियों के अंतर को झुठला नहीं सकता। नई कविता ने बराबर अनुभव की संश्लिष्टता और समग्रता पर बल दिया है, जबकि नई कहानी अनुभव के सीधेपन को, देवी शंकर अवस्थी के शब्दों में, प्रत्यक्ष अनुभव को सीधे कह देना चाहती है। इस क्रम में प्रत्यक्ष अनुभव तथा सीधी अभिव्यक्ति के बाद सपाट बयानी का दौर आता है, जिसकी शुरुआत धूमिल के काव्य संकलन संसद से सड़क तक 1972 से मानी जा सकती है। राजकमल चौधरी के साथ धूमिल इस दौर के सर्वाधिक चर्चित कवियों में हैं। यह ठीक है कि सपाट बयानी का प्रयोग दोनों के यहाँ अलग अलग उद्देश्यों के लिए होता है। राजकमल अकविता आंदोलन से जुड़कर यौन जीवन के चित्रण को केंद्र में रखते हैं, जबकि धूमिल ने बराबर सामाजिक यथार्थ के विविध विषम पक्षों को अपनी कविता में उघाड़ा है। अपने संकलन के मुखबंध में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। सीधा अनुभव और वक्तव्य की शैली, ये नई कविता के बाद के रचना आंदोलनों की मुख्य प्रवृत्तियां कही जा सकती हैं। नई कहानी के लेखक तथा अकविता और सपाट बयानी के कवि इस बिंदु पर एक रचना गोत्र के हैं। युवा लेखन के विविध रूपों में क्या कुछ सार्थक भाव से रचा जा सका है, इसके बारे में अभी कुछ ठीक ठीक कह पाना कठिन है। पूरे परिदृश्य पर प्रवाह की इतनी तेजी है कि कहीं कुछ नामों का ठहरना और उभर पाना संभव नहीं लगता। यह प्रवाह को प्रवाह के रूप में देख पाना भी अपने में एक अनुभव है। फिर भी धूमिल तथा राजकमल चौधरी का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने कविता तथा विविध माध्यमों में अपनी बात को सशक्त ढंग से कहने की कोशिश की है। दोनों की असामयिक मृत्यु ने उनकी संभावनाओं को बीच में ही अवरुद्ध कर दिया। धूमिल का संकलन संसद से सड़क तक अपनी तलखी और चुस्त मुहावरेदानी के कारण नई पीढ़ी में बड़ी रुचि के साथ पढ़ा गया। संसद और सड़क दोनों पर कवि की टिप्पणियां समकालीन जीवन यथार्थ का सीधा वर्णन प्रस्तुत करती हैं। मुक्ति प्रसंग और कंकावती तथा राजकमल चौधरी के कई उपन्यास इस मरोड़ और बेचैनी का तीखा एहसास कराते हैं। यह उनकी भी प्रतिभा का मूल रूप कविता में ही दिखाई देता है। धूमिल से मिलता जुलता स्वर लीलाधर जगूड़ी का है, जिनके संकलन नाटक जारी है का प्रकाशन संसद से सड़क तक के साथ साथ होता है। ये दोनों कवि कुछ समय बाद अपने बनाए मुहावरों में फंस जाते हैं, जो एक प्रकार से सपाट बयानी की ही सीमा है। रघुवीर सहाय के यहाँ जिस गद्य कविता का रूप संभव होता है, उस दिशा में भी कुछ कवि सक्रिय हुए हैं। उल्लेखनीय है अरुण कमल, नीलाभ, विष्णु नागर, ज्ञानेन्द्रपति, उदय प्रकाश, असद जैदी, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, गगन गिल और वीरेन डंगवाल। भगवत रावत, जितेंद्र कुमार, फिर बोधिसत्व, यतीन्द्र मिश्र इसी क्रम में आते हैं। आधुनिक आलोचना और कविता के समानांतर विकास क्रम का विवेचन करते हुए हमने परिलक्षित किया था कि कैसे खड़ी बोली काव्य भाषा हरियौत के सीधे सीधे इतिवृत्त कथन से आगे सुमित्रानंदन पंत के अप्रस्तुत विधान में बदलती हुई शमशेर की संश्लिष्ट काव्यानुभूति तक पहुँचती है। पर नई कविता के बाद काव्य भाषा दो विरोधी मोड़ों पर घूमती नजर आती है। एक ओर कविता को बयान की शक्ल में पेश किया गया है, जिसका उल्लेख धूमिल के संदर्भ में अभी किया गया। जाहिर है कि कविता के इस रूप में वक्तृत्व को, यानी बात को फैलाकर और चुटीले ढंग से कहने को अनुभूति संघनन के ऊपर महत्व मिला है। चौथा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय को भी शिकायत है कि वहाँ संकलित कविताएं बोलती अधिक, पृष्ठ संख्या 271, और कहती कम है। समकालीन कविता की एक दूसरी मुद्रा है व्यंग की। यह व्यंग या कि आयरनी का रूप नई कविता में था, एक उपकरण के रूप में, पर बाद में चलकर उसे पूरे विधान के केंद्र में रख दिया गया। यह कुछ वैसे ही हुआ जैसे आप हर समय बिराते हुए चले। इन दोनों विधानों में यथार्थ की पकड़ अतिरंजित होकर छूट जाती है। एक स्थिति में यह यथार्थ का अति सरलीकरण करती है तो दूसरी ओर उसे विद्रूप करती है। रोचक विडंबना यह है कि ये दोनों प्रक्रियाएं यथार्थ पर बल देने के आग्रह में विकसित हुई हैं। यथार्थ के बहुआयामी और बहुस्तरीय रूप को समझने के बजाय कविता के ये दोनों मोड़ किसी न किसी आग्रह के साथ उसके एक पक्षीय रूप को ही अपना गंतव्य मानते हैं। समकालीन जीवन में राजनीति के बेअनुपात महत्वशाली होते जाने की ये परिणतियां हैं। राजनीति से एकांत लगाव बयानबाजी को फैलाता है और उससे अरुचि व्यंग की मुद्रा में फूटती है। काव्य भाषा के स्तर पर समकालीन कविता की ये कुछ समस्याएं हैं, तो कथा भाषा के स्तर पर उपन्यास की भी समस्याएं हैं। समीक्षक इतिहासकार उनकी ओर संकेत कर सकता है, उनके हल करने का उपाय तो रचनाकार ही निकालेगा। कविता या नाटक में भाषा को तोड़ना अपेक्षा सुगम है क्योंकि उनका भाषा प्रयोग सांकेतिक अधिक है, पर उपन्यास में चाहे जितना संक्षिप्त हो वर्णन चाहिए, और यह वर्णन आधुनिक कविता के अमूर्त तथा विरूप होते विधान द्वारा संभव नहीं, क्योंकि ये प्रक्रियाएं व्यंजना की हैं, वर्णन की नहीं। तब समस्या यह है कि उपन्यास में भाषिक प्रयोग के इन दो स्तरों को मिलाया कैसे जाए। हिंदी में शुद्ध व्याकरणिक स्तर पर भी गद्य के विन्यास को कुछ नवीकृत नहीं किया गया। हिंदी कथा साहित्य का आद्य वाक्य विन्यास है, एक राजा था। यदि ध्यान से देखा जाए तो इस मूल वाक्य रचना में कई और विकल्प बनते हैं, राजा था एक, एक था राजा और था एक राजा, पर हिंदी कथाकार एक राजा था के विन्यास के आगे बहुत कम बढ़ पाता है क्योंकि उसे कहानी कहने की जल्दी है और एक राजा था के आगे तुरंत बताना है और एक रानी थी। हिंदी गद्य का स्वाभाविक विन्यास कर्ता कर्म क्रिया उसके मन में इतनी मजबूती से बैठ गया है कि यहाँ वह क्या और प्रयोग कर सकता है यह बात उसके सोचने में नहीं आती। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वाक्य विन्यास की भंगिमा बदलते ही राजा होना या उसके होने का ढंग बदल जाता है। इस प्राथमिक विन्यास को कविता और नाटक के अविकसित अमूर्त विन्यास के समानांतर लाना आसान नहीं। वर्णन का उपयोग करते कालक्रम को फेंटने का उपक्रम इधर कई उपन्यासकारों ने किया है। कृष्ण बलदेव वैद्य, विपिन कुमार अग्रवाल, गंगा प्रसाद विमल, विनोद कुमार शुक्ल, ज्योत्सना मिलन, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग और अलका सरावगी के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं, जहाँ वे कथा भाषा को नए रूप में सृजना चाहते हैं। गिरिराज किशोर ने यथा प्रस्तावित में भाषा संबंधी मौलिक प्रयोग तो नहीं किए, पर वर्णन को हल्का करके अनुभव को सघन बनाने का यत्न किया है। वर्णन की परंपरित स्थूल भाषा और नई कविता की अमूर्त और विरूपीकृत भाषा को एक रचना विधान में कैसे संगठित किया जाए जिससे दोनों के बीच न जोड़ दिखाई दे और न दरार ही, यही आधुनिक उपन्यास की मूल समस्या है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार सॉल बेलो ने कथा भाषा के इस आंतरिक वैषम्य को शमित करने का एक उपाय निकाला है। अपनी कृति हर्जोग में उन्होंने कथा प्रवाह को दो स्तरों पर एक साथ अंकित किया है। एक स्तर पर कथा स्थूल प्रसंगों में घटित होती चलती है, एक दूसरे स्तर पर इन प्रसंगों को लेकर चरित्रों की मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। इन दो स्तरों का अलगाव उपन्यासकारों ने मुद्रण शैली के माध्यम से उभारा है। एक कथा स्तर का वर्णन एक प्रकार की टाइप व्यवस्था में है, पृष्ठ संख्या 272, और दूसरे स्तर पर मानसिक जगत के द्वंद्व का अंकन एक भिन्न प्रकार की टाइप व्यवस्था में चलता है। स्पष्ट ही यह ढंग रचना प्रक्रिया का अंग न होकर एक कृत्रिम मुद्रण प्रणाली पर आधारित है, पर इतना तो मानना होगा कि रचनाकार ने आधुनिक कथा भाषा की समस्या को समझा है और अपने ढंग से उसका समाधान देने का यत्न भी किया है। ऐसा समाधान जो प्राचीन संस्कृत नाटककारों की उस प्रविधि का स्मरण दिलाता है जिससे वे नाटकीय कार्य तथा कथन को स्वगत और प्रकट में बांटकर यथार्थ का द्विस्तरीय चित्रण करते चलते थे। अज्ञेय ने काल चिंतन संबंधी अपने कृति संवत्सर में इस रचना समस्या के कई पहलुओं को उभारा है। संप्रेषण का काल, भाषा का क्रम शीर्षक अध्याय में विवेचन को समेटते हुए वे लिखते हैं, वास्तव में उपन्यास की समूचे साहित्य की समस्या केवल यथार्थ को प्रस्तुत करने की समस्या नहीं है, बल्कि यथार्थ को रचने की समस्या है। यथार्थ को रचने की और फिर उस रचे हुए यथार्थ के संप्रेषण की। यथार्थ को रचने में यहाँ भाषा के केंद्रीय योगदान का प्रश्न हमारे सामने आता है। नाटक की भाषा से अपेक्षाएं कई तरह की हैं और उस अनुपात में नाटककार के लिए यह समस्या भी अधिक रही है कि वह किस प्रकार अपनी भाषा को क्रिया के साथ जोड़े। हिंदी में नाटक और रंगमंच के अभाव की चर्चा बार बार होती है, पर यहाँ बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में रिश्ता कम रहा, इस कारण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या अनामिका या प्रयाग रंगमंच के माध्यम से हिंदी रंगमंच में नई जागृति आई है, तो अन्य कारणों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि अब लेखकों और रंगकर्मियों के संदर्भ में बोलने की भाषा और नाट्य भाषा में अंतर कम से कम की स्थिति में आ गया है। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में इस समय ऐसी अनेक प्रतिभाएं आ रही हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी न होकर कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़ या मराठी है। ऐसे रंगकर्मी साधारण बोलचाल में परिनिश्चित हिंदी का व्यवहार करते हैं और इसी भाषा रूप का प्रयोग रंगमंच पर करते हैं। उनके उच्चारण और सुर में स्वभावतः उनकी अपनी मातृभाषाओं का संस्कार है, जो उनके द्वारा प्रयुक्त हिंदी ध्वनि समूह को एक प्रीतिकर विस्तार देता है। शब्द समूह और वाक्य विन्यास के साथ इस ध्वनि समूह का विकास हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में एक स्मरणीय उपलब्धि है। जैसे हिंदी फिल्मों के अभिनेता पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी और अब तो दक्षिण भाषाई क्षेत्रों के भी हैं, पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार, शांताराम, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय तथा सरल संगीत की भी जहाँ सुरों की विशेष महिमा है, वैसी ही स्थिति है। ओंकारनाथ ठाकुर, पटवर्धन, बड़े गुलाम अली, भीमसेन जोशी तथा लता मंगेशकर, जूथिका रे, सुब्बू लक्ष्मी। उसी प्रकार से हिंदी नाटक और रंगमंच का व्यापक विकास विविध भाषा क्षेत्रों की प्रतिभा के सामूहिक योगदान से अधिक शक्ति संपन्न होगा। वस्तुतः इन कला माध्यमों से हिंदी सार्वदेशिक भाषा ऐसे रूप में बन सकेगी जिसमें कि भारत की समन्वित संस्कृति की उत्तरोत्तर सहज अभिव्यक्ति हो सके। समकालीन साहित्य में रचना प्रक्रिया की इन विविध समस्याओं के अतिरिक्त लेखन के लिए व्यवहारिक स्तर पर कुछ विचलक तत्व भी हैं। इनमें मुख्य दो हैं, एक तो संचार साधन और दूसरे पुरस्कार सुविधाएं। इनमें से स्पष्ट ही हटने वाला कोई नहीं, पुरस्कार तो आधुनिक युग की अप्सराएं हैं, ऋषियों मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने वाली। पर ऋषि मुनि कभी यह शिकायत नहीं कर सकते कि उनकी तपस्या जब कठोर होती है तो अप्सराएं उनका ध्यान भंग करने के लिए चारों ओर नृत्य क्यों करती हैं। अप्सराएं तो नृत्य करेंगी ही, परीक्षण ऋषि मुनियों के संयम का है कि वे उनकी ओर दृष्टिपात करें या न करें। ऐसी ही पृष्ठ संख्या 273 स्थिति प्रोत्साहन सुविधाओं की है, जो कभी राज्य की ओर से प्रवर्तित हैं, कभी व्यक्तियों या कि न्यासों की ओर से। लेखक यह नहीं कह सकता कि ये ना हो, पर उनका सामना करने की क्षमता उसे विकसित करनी होगी, मिलने की स्थिति में भी और न मिलने की स्थिति में भी। संचार साधन दूसरी बाधा है, उनके माध्यम से फैलना उतना बुरा नहीं है जितना उनके माध्यम से प्रचारित होना। लेखकीय एकांत में विघ्न डालने वाला यह दूसरा तत्व है, जो भी राज्य या कि गैर राज्य क्षेत्रों से प्रवर्तित हो सकता है। संचार साधन न केवल एकांत को भंग करता है, बल्कि सूचनाओं की ऐसी ढेरी भी लगाता है जिनके बीच में अनुभूति का क्षरण स्वाभाविक है। भारतीय संस्कृति अभी तक अनेक आक्रामक संस्कृतियों को झेलती और समरस करती आई है। इस यांत्रिक सभ्यता संस्कृति नहीं से वह कैसे निपटेगी, यह देखने की बात है। संस्कृति की चुनौती उसने आंतरिक स्तर पर स्वीकार की, सभ्यता के संघात को भी वह उसी स्तर पर झेले या कठिन है, और उसी टक्कर की प्रति सभ्यता वह विकसित कर सके यह भी आसान नहीं। ऐसी स्थिति में 20वीं सदी का यह द्वंद्व उसके भावी विकास में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। भाषा, धर्म, संस्कृति, इन सभी संदर्भों में हिंदी क्षेत्र रामचंद्र शुक्ल की शब्दावली में विरुद्धों का सामंजस्य करता आया है। आचार्य शुक्ल अपने विवेचन में समन्वय साधना की बात भी कहते हैं और विरुद्धों के सामंजस्य की भी। लोक मंगल की सिद्धावस्था और साधनावस्था की तरह ही यहाँ भी उच्चतर भूमि विरोधों के सामंजस्य की है। एक में बचाव की मनस्थिति है तो दूसरी में उत्साहपूर्ण कर्म की। इस नए द्वंद्व में हिंदी मानस किस प्रक्रिया को अपनाए, यह विचारणीय है। संस्कृतियों के संघर्ष में जिसका नवीनतम उदाहरण 19वीं सदी का पुनर्जागरण है, उसने विरोधों का सामंजस्य किया। वहां संघर्ष चैतन्य शक्ति से था। अब इस नई टकराहट में पश्चिम की यांत्रिक सभ्यता सामने है जो अपनी प्रकृति में जड़ है। शायद यहां बचाव की मुद्रा में समन्वय साधना की शैली अधिक फलप्रद होगी। विरुद्धों के सामंजस्य की शैली यहां लंबे समय से चलती आ रही है। इसका एक कारण यह है कि इसका प्रशिक्षण भारतीय परिवार व्यवस्था में आप से आप होता आया है। चिति केंद्रों में संघर्ष का यह पहला मुख्य मोर्चा है। यह आकस्मिक नहीं कि देव सृष्टि की तुलना में मानवीय सृष्टि को कामायनी में प्रसाद इसलिए स्मरणीय दिखाते हैं कि मनुष्य की संस्कृति अपनी प्रकृति से सृजनात्मक है। स्थूल स्तर पर मनुष्य की सृष्टि उसकी संतान है और सूक्ष्म स्तर पर उसकी रचना। मृत्यु की चुनौती से जूझने के लिए मनुष्य ने इन दोनों प्रकार की क्षमताओं का आविष्कार किया। अजर अमर देव संस्कृति को न तो इस क्षमता की आवश्यकता थी और न उसे विकसित करने की उसमें पात्रता ही। श्रद्धा को कवि इसलिए वर्ण्य मानता है क्योंकि वह सृष्टि की पहली माँ है। दर्शन सर्ग में मनु श्रद्धा की पहचान इस रूप में करते हैं। मनु ने देखा कितना विचित्र वह मातृमूर्ति थी विश्वमित्र, और माँ होकर ही श्रद्धा गृहस्थ जीवन के विविध संघर्षों को पहली बार झेलती है जो देव सृष्टि में अकल्प्य थे। इसी छंद में कवि श्रद्धा के लिए कहता है, वह लोक अग्नि में तप तप गलकर थी ढली स्वर्ण प्रतिमा बनकर। गृहस्थी और परिवार का जीवन लोक अग्नि की पहली आंच है जिसमें तप गलकर श्रद्धा स्वर्ण प्रतिमा जैसी निखरती है। तब यह अचरज नहीं, पृष्ठ संख्या 274, कि हिंदी के तीन बड़े रचनाकार तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद परिवार की मर्यादा या मर्याद का चित्रण करके ही जनप्रिय हुए हैं। इस प्रसंग में हिंदी भाषा की प्रकृति भी हिंदी संवेदना के एकदम अनुकूल साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ताऊ, काका, चाचा, मामा, फूफा, मौसा हिंदी के परिवारवाची संबंधों की श्रृंखला को व्यक्त करने वाले विविध शब्द हैं जिनके लिए अंग्रेजी में एकमात्र पर्याय है अंकल। हमारी भाषा और संस्कृति ने जीवन के एक एक संबंध को अलग अलग संजो कर रखा है और यहीं से हमने विरुद्धों के सामंजस्य की सीख ली है जिसकी एक दिशा रामायण की ओर जाती है और दूसरी महाभारत की ओर। प्रस्तुत अध्ययन के एकदम आरंभ में इन दोनों विकल्पों की ओर संकेत किया गया है। हिंदी भाषा और संवेदना का रूप इस आँच में तब गलकर बना है जिसमें 1000 वर्ष के साहित्य की स्वर्ण प्रतिमा ढली है। नए सहस्त्राब्द में विचार संचार काल का विवेचन आगे द्रष्टव्य है।